सोचिए कि अगर किसी पर हत्या और साम्राज्य के खिलाफ बगावत का संगीन मुकदमा चल रहा हो और उसके खिलाफ 40 लोग आमरण अनशन पर बैठे हों कि जब तक वो उस इंसान को मार नहीं देते वो अन्य जल का एक दाना भी नहीं खाएंगे।
एक बेहद जानलेवा स्थिति।
बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में बचने का सिर्फ एक ही तरीका बचे, अपने दुश्मनों को आपस में ही बुरी तरह लड़ा देना। हम यहाँ किसी हॉलीवुड थ्रिलर की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हजारों साल पुराने एक ऐसे कानूनी नाटक की बात है जिसने पूरे रोमन एम्पायर के जस्टिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया था।
सही कहा, और इस गहरे विश्लेषण में हम डॉक्टर क्रेग कीनर द्वारा एक्ट्स यानी प्रेरितों के काम, उसके अध्याय 23 से 26 पर दिए गए लेक्चर 22 की पूरी परतें खोलने वाले हैं।
हाँ, और हमारा मकसद किसी आम इतिहास की किताब को पढ़ना नहीं है, हम ये समझेंगे कि कैसे पॉल यानी पॉलस ने अपनी कानूनी रणनीति और प्राचीन रोम के जस्टिस सिस्टम के छुपे हुए राजनीतिक साजिशों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया।
एकदम, और जो सोर्स मटेरियल आज हमारे सामने है वो सच में किसी हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा जैसा लगता है। मतलब इसमें भ्रष्ट नेता है, शाही परिवारों के ऐसे स्कैंडल्स हैं जो आज के टैब्लॉइड्स को भी पीछे छोड़ दें।
अरे बाप रे, टैब्लॉइड से भी आगे।
हाँ बिल्कुल, और एक ऐसी कोर्टरूम स्ट्रैटेजी दिखेगी जहां धार्मिक मुद्दे और रोमन एम्पायर का काफी कॉम्प्लेक्स कानूनी ढांचा आपस में टकराते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ बल्कि ये समझेंगे कि वैसा क्यों हुआ।
तो चलिए सीधे उस एक्शन में चलते हैं जहां से ये पूरा बवाल शुरू होता है। बात एक्ट्स के अध्याय 23 से शुरू होती है। एक रोमन ट्रिब्यून है क्लॉडियस लिसियस, वो पॉल के मामले को समझने के लिए सैनहेड्रिन को बुलाता है।
जो उस वक्त यहूदियों की सबसे बड़ी मुख्य परिषद थी।
सही, यहां पर उस वक्त का हाई प्रीस्ट एनानियस अचानक आदेश देता है कि पॉल के गाल पर थप्पड़ मारा जाए, और सोर्स बताता है कि ये एनानियस साल 47 से 59 तक इस पद पर था और अपनी क्रूरता के लिए इतना बदनाम था कि आगे चलकर क्रांतिकारियों ने ही उसे मार डाला था। लेकिन भरे कोर्ट में थप्पड़ मरवाना,
ये तो सीधा कानून का अपमान था, और प्राचीन रोमन और यहूदी दोनों न्याय प्रणालियों में ये एक संगीन बात थी। देखिए, किसी को गाल पर थप्पड़ मारना एक कानूनी अपराध माना जाता था। इसे लेक्स टैलियोनिस यानी आंख के बदले आंख के नियमों के अंतर्गत रखा जाता था।
वेट, यानी जज ने खुद भरे दरबार में कानून तोड़ दिया।
एकदम सही, इसके लिए बाकायदा जुर्माना लगाया जा सकता था। तो जब एनानियस ने यह आदेश दिया, एक जज के रूप में उसने कानूनी नैतिकता का उल्लंघन किया था, और यही वजह है कि पॉल तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और एनानियस को व्हाइट वॉश्ड वॉल यानी सफेदी की हुई दीवार कह देते हैं।
वाह, मतलब सीधा जज को भ्रष्ट कह दिया।
हाँ, और ये कोई आम गाली नहीं थी, ये इज़ीकियल 13 का एक सीधा हवाला था जहाँ भ्रष्टाचार और खोखलेपन को सफेदी से छुपाने की बात की गई है।
लेकिन इसके बाद तो भीड़ पॉल पर भड़क जाती है कि तुम हाई प्रीस्ट का अपमान कर रहे हो। तब पॉल कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हाई प्रीस्ट है। अब यहाँ एक काफी पॉपुलर थ्योरी घूमती है कि क्या पॉल की आंखें कमजोर थी।
लोग इसको गैलेशियंस 4:13 से जोड़ते हैं जहाँ फिजिकल इलनेस की बात है।
वही ना, तो क्या सच में पॉल को दिखाई नहीं दे रहा था कि सामने कुर्सी पर कौन बैठा है?
डॉक्टर कीनर इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। प्राचीन साहित्य में आंखें निकाल कर देना एक आम मुहावरा हुआ करता था, जैसे हम आज कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ।
अच्छा, तो वो बस स्नेह दिखाने का तरीका था, लिटरली नहीं।
बिल्कुल, लेकिन असल मुद्दा कुछ और था। सन्हेड्रिन की जो आम काउंसिल मीटिंग होती थी उसमें हाई प्रीस्ट अपने ऑफिशियल कपड़ों में यानी अपने रिगेलिया में नहीं आता था। वो खास कपड़े सिर्फ मंदिर के अनुष्ठानों के लिए होते थे।
ओह, तो पॉल को सच में नहीं पता था?
नहीं नहीं, डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि पॉल यहाँ बहुत शार्प साकेजम यानी व्यंग का इस्तेमाल कर रहे थे। पॉल बहुत पढ़े लिखे थे, उन्हें पता था कि सबसे ऊंची कुर्सी पर कौन बैठा है। पॉल यहाँ अपना ईथोस स्थापित करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे थे।
क्या बात है, वो दिखा रहे थे कि मैं यहाँ कानून मान रहा हूँ पर न्यायाधीश कानून तोड़ रहा है। उन्होंने उसे हाई प्रीस्ट मानने से ही इनकार कर दिया। एकदम शार्प कानूनी दिमाग।
हाँ, और इसके बाद तो उन्होंने पूरे कमरे का ही नक्शा बदल दिया। उन्होंने देखा कि उस कमरे में दो अलग अलग फैक्शंस हैं, सदुसीज और फैरिसीज।
तो वो सीधा चिल्लाते हैं कि मैं एक फैरिसी हूँ और मुझे रेजरेक्शन यानी मरे हुओं के पुनर्जन्म के मुद्दे पर ट्रायल पर लाया गया है। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, सदुसीज और फैरिसीज आखिर थे कौन?
ये समझना जरूरी है। सदुसीज उस जमाने के एलीट क्लास थे, एरिस्टोक्रेटिक लोग जो मंदिर का सिस्टम चलाते थे। वो लोग मौत के बाद किसी भी जिंदगी, फरिश्तों या स्पिरिट्स में विश्वास नहीं करते थे।
मतलब उनके लिए बस यही दुनिया थी जो है।
सही। और दूसरी तरफ थे फेरिसीज, जो आम जनता के ज्यादा करीब थे। धर्म ग्रंथ को सख्ती से मानते थे और पुनर्जन्म और आत्माओं में पूरा विश्वास रखते थे। इन दोनों के बीच हमेशा एक आइडियोलॉजिकल कोल्ड वॉर चलती रहती थी।
तो पॉल ने एक तीर से दो शिकार किए। जैसे ही उन्होंने रिजरेक्शन का नाम लिया, दोनों ग्रुप्स पॉल को भूलकर आपस में ही भिड़ गए। सनहेड्रिन में ऐसी फूट पड़ी कि लोग पॉल को दोनों तरफ से खींचने लगे।
हाँ, और क्लॉडियस लाइसियस को अपने रोमन सैनिक भेजकर पॉल को वहां से जिंदा निकालना पड़ा। और पॉल ने ये सुनिश्चित कर दिया कि रोमन ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये दर्ज हो जाए कि ये बवाल सिर्फ एक आंतरिक धार्मिक विवाद है, रोम के खिलाफ कोई बगावत नहीं।
ये हुई ना स्ट्रेटजी। लेकिन यहां से हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। अब सनहेड्रिन में हुए इस हाहाकार के बाद 40 हार्डकोर नौजवान ज़ीलॉट्स कसम खाते हैं कि जब तक पॉल की हत्या नहीं कर देते, वो ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे।
उनका प्लान था कि जब पॉल को दोबारा सनहेड्रिन लाया जाएगा तो रास्ते में उस पर हमला करेंगे।
और उस रास्ते की ज्योग्राफी भी उनके फेवर में थी, है ना? एंटोनियो फोर्ट्रेस से सनहेड्रिन तक का रास्ता बहुत ही संकरा था, मुश्किल से 1000 या 1500 फीट। ऐसी तंग गलियों में रोमन फौज किसी काम नहीं आती। ये सीधा एक सुसाइड मिशन था। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे एक बात हजम नहीं हो रही। 40 लोग मिलकर इतनी टॉप सीक्रेट साजिश रखते हैं और पॉल का भांजा वहां घूमते हुए आराम से सब कुछ सुन लेता है। क्या सिक्योरिटी इतनी लापरवाह थी या कोई और ही राजनीति थी?
ये लाजमी सवाल है। आज हमें लगता है कि ऐसी साजिशें बंद कमरों में होती है, लेकिन प्राचीन जुडिया में जोसेफस की किताबें पढ़ें तो पता चलता है कि अधिकारियों और फैक्शंस के बीच जानकारियां लीक होना बेहद आम बात थी।
मतलब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
बिल्कुल। नौकर, गार्ड्स, आम लोग सब कनेक्टेड थे, तो लीक होना हैरानी की बात नहीं थी। और जैसे ही लिसियस को पॉल के भांजे से इस लीक का पता चलता है, उसके पसीने छूट जाते हैं।
पसीने क्यों? पॉल तो आखिर एक कैदी ही था ना।
क्योंकि पॉल एक रोमन नागरिक था। रोमन कानून के मुताबिक अगर एक रोमन नागरिक की हत्या एक भीड़ के हाथों कस्टडी में हो जाती तो रोम इसकी जिम्मेदारी लिसियस पर डालता। उसकी सजा सीधे मौत होती।
ओहो, तो वो पॉल को नहीं अपनी खुद की गर्दन बचा रहा था। तभी उसने रातों रात एक फोर्स्ड मार्च का आदेश दिया और पॉल को सीजेरिया भेज दिया। और सैनिकों की गिनती तो सुनिए, 480 इन्फेंट्री और 120 कैवलरी, मतलब तकरीबन 600 सैनिक एक आदमी के लिए।
उस गिनती के पीछे एक सॉलिड मिलिट्री लॉजिक था। जेरुशलेम से एंटीपेट्रीस तक का रास्ता 35 से 45 माइल लंबा उतराई वाला रास्ता था, और उस अंधेरे में जुडियन पहाड़ियों में रेबल्स के हमले बहुत आम थे।
अच्छा, तो एक छोटी टुकड़ी को आसानी से मारा जा सकता था।
सही। लेकिन 600 सैनिकों की बटालियन देखकर कोई भी एम्बुश करने वाला पीछे हट जाता। ये शो ऑफ फोर्स था। साथ ही लाइसियस ने गवर्नर फेलिक्स को जो कवर लेटर लिखा, उसमें कहानी को ट्विस्ट कर दिया। उसने खुद को एक हीरो की तरह पेश किया।
एकदम क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक मूव, अपनी गलती छुपाओ और खुद को हीरो दिखाओ। अब हमारे कहानी का सेट बदल जाता है। हम पहुंचते हैं सीजेरिया के कोर्ट रूम में, गवर्नर फेलिक्स के सामने।
यहाँ का दृश्य काफी मजेदार है। एक तरफ टर्टुलस है, एक काबिल रोमन वकील, और दूसरी तरफ अकेले पॉल।
टर्टुलस आते ही फेलिक्स की झूठी तारीफों, उसकी फ्लैटरी पर उतर आता है। लेकिन पॉल जब बोलते हैं तो वो एक क्लासिक रोमन डिफेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, नरेशन और रेफ्यूटाशियो।
हाँ, रोमन कोर्ट्स में नरेशो का मतलब होता था घटनाक्रम को सीक्वेंस में सामने रखना ताकि बेस स्टोरी समझ आए, और रेफ्यूटेशियो का मतलब था विरोधी वकील के एक एक आरोप को लॉजिक और एविडेंस से काटना। पॉल वही करते हैं।
वो नरेशो में बताते हैं कि वो वहां सिर्फ 12 दिन से हैं और उनका मकसद सिर्फ पेंटेकोस का त्योहार मनाना था। अपना पायटी साबित करते हैं।
बिल्कुल।
और इसके बाद पॉल एक ऐसी चीज कबूल कर लेते हैं जिसको डॉक्टर कीनर नॉन क्राइम कहते हैं। पॉल सीना थोक करके कहते हैं कि हाँ, मैं अपने तरीके से ईश्वर की पूजा करता हूँ और पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी थी।
वही ना। इसको अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये वैसा ही है जैसे कोई आपसे ट्रैफिक रूल तोड़ने पर पूछे और आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोलें, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने कल दोस्तों के साथ लूडो में चीटिंग की थी। अब ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? लूडो में चीटिंग कोई कानूनी जुर्म थोड़ी है।
ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। पॉल ने ठीक यही किया। उसने एक धार्मिक बात कबूली जो रोमन एम्पायर के कानून के हिसाब से कोई जुर्म थी ही नहीं, और इसके तुरंत बाद पॉल अपना सबसे बड़ा लीगल दांव चलते हैं।
हाँ, वो पॉइंट आउट करते हैं कि जिन लोगों ने उन पर असल मुद्दा उठाया था, यानी एफेसस शहर के वो लोग, वो तो कोर्ट में पेशिंग ही हुए।
सही पकड़ा। रोमन लॉ का एक बहुत ही सख्त नियम था जिसे डेस्टिट्यूशो कहा जाता था। अगर आरोप लगाने वाला आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता तो मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी होती थी कि वो केस को वहीं खारिज कर दे।
मतलब कानून के हिसाब से फीलिक्स को तुरंत अपनी थोड़ी बजाकर केस बंद कर देना चाहिए था। केस डिसमिस, पॉल आजाद। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फीलिक्स पॉल को अगले 2 साल तक कैद में ही लटका कर रखता है,
क्योंकि इसके पीछे कोई लीगल लूपहोल नहीं बल्कि करप्शन था। फीलिक्स को लगता था कि पॉल के पास काफी पैसा है और वो रिश्वत देगा। लेकिन फीलिक्स की पर्सनालिटी में और भी बहुत कुछ था।
हाँ, थोड़ा उस पर रोशनी डालिए।
फीलिक्स जन्म से आजाद नागरिक नहीं था, वो एक फ्रीडमैन था, यानी एक गुलाम जिसे आजाद किया गया था। उसे गवर्नर का पद इसलिए मिला क्योंकि उसका शक्तिशाली भाई पल्लस रोम में सम्राट के करीब था। फीलिक्स के अंदर एक डीप रूटेड इनसिक्योरिटी थी।
और उसकी निजी जिंदगी भी तो काफी विवादित थी, है ना?
एकदम। उसकी पत्नी ड्रुसिला, जो किंग अग्रिप्पा फर्स्ट की बेटी थी, उसकी शादी पहले किसी और से हुई थी। फीलिक्स ने एक साइप्रियट जादूगर की मदद से उसको फुसलाकर अपने पहले पति को छोड़ने पर मजबूर किया और खुद उससे शादी कर ली।
अरे बाप रे, मतलब उन दोनों का जीवन स्कैंडल्स और लालच से भरा था। उन्हें सेल्फ कंट्रोल का तो मतलब ही नहीं पता होगा।
बिल्कुल नहीं।
तो सोचे कितना ऑकवर्ड माहौल रहा होगा जब फीलिक्स और ड्रुसिला पॉल को बुलाते हैं कि चलो फिलॉसफी पर चर्चा करते हैं, और पॉल उनके सामने राइचियसनेस, सेल्फ कंट्रोल और जजमेंट पर प्रीच करना शुरू कर देते हैं।
ये तो सीधा उनकी दुखती रग पर हाथ रखना था।
वही तो। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि फीलिक्स इस प्रीच को सुनकर बुरी तरह घबरा जाता है और वहां से चला जाता है।
वो पॉल जानबूझकर सेल्फ कंट्रोल वाला मुद्दा उठा रहे थे ना।
वो जानते थे कि इन दोनों का कच्चा चिट्ठा क्या है।
यही पॉल की सबसे बड़ी ताकत थी। वो डर रहे थे। उनके लिए उनका मिशन किसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी से ऊपर था। लेकिन आखिरकार फीलिक्स का भ्रष्टाचार उस पर भारी पड़ता है। जुडिया में दंगे बढ़ने की वजह से रोम उसे वापस बुला लेता है,
और जाते जाते वो पॉल को वैसे ही कैद में छोड़ जाता है, सिर्फ लोकल अथॉरिटीज को खुश करने के लिए। फिर इस कानूनी मेस को साफ करने के लिए रोम एक नए नो नॉनसेंस गवर्नर को भेजता है, फेस्टस।
फेस्टस चाहता था कि मामला जल्दी निपटे, लेकिन वो आते ही एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसने पॉल को अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने पर मजबूर कर दिया। फेस्टस प्रस्ताव रखता है कि पॉल का ट्रायल वापस जेरूसलम शिफ्ट कर दिया जाए।
पॉल को पता था कि जेरूसलम गया तो रास्ते में वो 40 जीलॉट्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब पॉल अपना अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड निकालते हैं, रोमन नागरिक होने का हक जताते हुए कहते हैं, मैं सीजर को अपील करता हूं।
ये बहुत बड़ा कदम था।
अगर इसको आज की कॉर्पोरेट भाषा में समझें, ये वैसा ही है जैसे आपको पता चल जाए कि आपका लोकल HR डिपार्टमेंट करप्ट है, तो आप उनकी हायरार्की को बाईपास करके सीधे कंपनी के CEO को ईमेल थोक दें।
ये एनालॉजी बिल्कुल फिटिंग है। रोमन कानून में प्रोवोकाटियो एट सीजारम, यानी सीजर को अपील करना, एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार था। जैसे ही पॉल ने ये शब्द कहे, फेस्टस की अथॉरिटी वहीं खत्म हो गई।
और फेस्टस के लिए तो ये एक पॉलिटिकल लाइफलाइन बन गई ना।
हाँ, अब उसे जेरूशलम के नेताओं को नाराज नहीं करना पड़ा।
हाँ, लेकिन फेस्टस के सामने अब एक नई कानूनी दुविधा थी। रोम एक कैदी को भेजना है, लेकिन उसके पास कोई ठोस चार्जशीट नहीं थी। बिना ठोस आरोप के किसी को सम्राट के पास भेजना फेस्टस के काबिलियत पर सवाल उठा देता। और इसी दुविधा को दूर करने आते हैं किंग अग्रिप्पा II और उसकी बहन बर्नीस। ये दोनों फेस्टस को बधाई देने सिजेरिया आते हैं, और जैसा कि हमने कहा, इस कहानी में स्कैंडल्स की कोई कमी नहीं है।
बिल्कुल, बर्नीस का इतिहास सच में प्राचीन ट्रेजेडी और स्कैंडल का मिश्रण था। रोम के लेखकों जैसे जुवेनाल ने अग्रिप्पा और बर्नीस के बीच इंसेस्टुअस रिश्तों की काफी अफवाहें फैलाई थीं।
हाँ, वापस में भाई बहन थे ना।
सही। इसके अलावा बाद में जब रोमन जनरल टाइटस ने जेरूसलम पर कब्जा किया था, तब उसके और बर्नीस के बीच एक लंबा अफेयर चला था। टाइटस ने उसे रोम की एम्प्रेस बनने का वादा भी किया था।
बेट, सच में?
हाँ हाँ, लेकिन रोम की जनता एक यहूदी महिला को साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, तो उसका एम्प्रेस बनने का ख्वाब टूट गया। जब ये लोग फेस्टस से मिलते हैं तो फेस्टस को लगता है कि अग्रिप्पा को यहूदी कानूनों और हेलेनिस्टिक कल्चर दोनों की समझ है, तो वो रिपोर्ट तैयार करने में मदद कर सकता है।
और इसी बैकग्राउंड के साथ हम एक्ट्स के अध्याय 26 तक पहुंचते हैं। सब कोर्ट में बैठे हैं और यहाँ पॉल का डिफेंस किसी लीगल डिफेंस की तरह नहीं बल्कि एक शानदार पब्लिक स्पीकिंग मास्टरपीस की तरह सामने आता है।
डॉक्टर कीना हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पॉल की भाषा अचानक बदल जाती है। वो आम भाषा छोड़कर एक हाई लेवल सोफिस्टिकेटेड ग्रीक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ग्रीक नाटककार यूरोपिडिस की शैली की झलक मिलती है
और वो अपना विजन प्रीच करना शुरू करते हैं। तभी फेस्टस उनको टोक कर कहता है, पॉल तुम्हारा ज्ञान तुम्हें पागल बना रहा है।
फेस्टस का ऐसा कहना उस जमाने के हिसाब से बहुत लॉजिकल था। प्राचीन काल में जो दार्शनिक या प्रोफिट्स होते थे, खासकर सिनिक्स जो समाज की आम दुनियादारी या पावर के हिसाब से नहीं चलते थे, उन्हें अक्सर पागल ही माना जाता था।
अच्छा, जैसे पागल फिलोसोफर।
वही अगर ओल्ड टेस्टमेंट में 2 किंग्स चैप्टर 9 देखें तो जब एक प्रॉफिट जेहू को राजा घोषित करने आता है तो अधिकारी उसे इनसेन फेलो ही कहते हैं। पायलट ने भी शायद जीसस को एक हार्मलेस पागल दार्शनिक की तरह देखा था।
तो फेस्टस को लगा कि रोम की पावर की बजाय किसी मरे हुए आदमी के जिंदा होने की बात करना पागलपन है। लेकिन पॉल जरा भी नहीं घबराते। वो सीधा किंग अग्रिप्पा पर निशाना साधते हैं। पूछते हैं, किंग अग्रिप्पा, क्या आप प्रॉफिट्स में विश्वास करते हैं? मुझे पता है आप करते हैं।
ये एक बेहद शानदार ट्रैप था।
एकदम। अग्रिप्पा समझ जाता है कि वो फंस गया है। अगर हाँ कहता है तो पॉल की बात माननी पड़ेगी, अगर ना कहता है तो यहूदी जनता उसके खिलाफ हो जाएगी। तो वो कहता है, क्या इतने कम समय में तुम मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहते हो?
और इस पूरे दृश्य के बाद अग्रिप्पा और फेस्टस दोनों सहमत होते हैं कि पॉल बेकसूर है और आजाद हो सकता था अगर उसने सीजर को अपील न की होती।
और यही पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। अगर पॉल जानता था कि सीजर को अपील करने का मतलब है आजादी खोना, एक खतरनाक समुद्री सफर और रोम की कोठरी, तो क्या ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी या एक मास्टर कूटनीति?
यही तो मैकेनिज्म को देखने की बात है। पॉल का लक्ष्य कभी निजी आजादी था ही नहीं। अगर फेस्टस उसे वहां आजाद कर भी देता तो सन्हेड्रिन और वो 40 ज़ेलोट्स उसे जिंदा नहीं छोड़ते।
हाँ, बाहर तो मौत इंतजार कर रही थी।
बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, उनका मिशन रोम जाना था। रोम सत्ता और कल्चर का एपिसेंटर था। उन्हें अपना संदेश सम्राटों तक पहुंचाना था। सीजर को अपील करके उन्होंने रोमन एम्पायर के खर्चे पर रोमन सैनिकों की सुरक्षा के साथ रोम का अपना वीआईपी टिकट बुक कर लिया था।
क्या बात है, वो सिस्टम के रेड टेप का इस्तेमाल अपने मिशन के लिए कर रहे थे। तो अगर इस पूरे गहरे विश्लेषण को हम समेटें तो एक बात साफ है, एक्ट्स की यह अध्याय सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये प्राचीन रोम के कानूनी दांवपेच, पॉलिटिकल सर्वाइवल, करप्शन और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेहतरीन मास्टर क्लास है।
सही कहा, उन्होंने विरोधियों की कमजोरियों, थियोलॉजिकल मतभेदों और फेस्टस फीलिक्स जैसे नेताओं की मजबूरियों को डीपली समझा। वो सिस्टम के शिकार होने के बजाय उसके लूपहोल्स को नेविगेट करने वाले मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बन गए।
वाह। और इसके साथ ही आज के इस डिस्कशन को हम यहीं विराम देते हैं। शुरू में हमने उस धुंधले जस्टिस सिस्टम की बात की थी जहां पावर और साजिश सच्चाई पर भारी पड़ती थी, लेकिन पॉल ने दिखाया कि अगर आप सिस्टम को समझते हैं तो आप उसमें अपना रास्ता बना सकते हैं।
बिल्कुल बना सकते हैं।
जाते जाते एक आखिरी सोच पर विचार कीजिएगा। इतिहास की कितनी बड़ी घटनाएं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ पाई क्योंकि किसी एक इंसान को उस जमाने के ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और कानूनी लूपहोल्स की पूरी समझ थी। क्या आज का आधुनिक जस्टिस सिस्टम और पॉलिटिकल ढांचा सच में उस रोमन कोर्ट से अलग है, या आज भी कभी कभी न्याय इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस जज की कोर्ट में खड़े हैं और वकील सामने वाले की कमजोरियों पर कितना अच्छा खेल सकता है? सोचिए इस बारे में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।